ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਾ ਬਚਨ 20ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਖੋਲ ਕਰ ਭਾਈ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਜਾਈ।
ਆਜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਂ। ਯਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਯਹ ਰਚਨਾ, ਯਹ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਯਹ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਏਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਵਹ ਕੌਨ ਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਵਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਯਹ ਜਾਮਾ ਹਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕਰ ਹਮ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਂ, ਨਾਮ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨੋਂ ਸੇ, ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸੇ ਸਦਾ ਕੇ ਲੀਏ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਤੋ ਵਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ, ਮਾਲਿਕ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਮੇਂ ਹਰ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਆਏ ਹੈਂ। ਖਾਨਾ ਪੀਨਾ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਹਮ ਹਰ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਕਰਤੇ ਆਏ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੀ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਅਭੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਵਹ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਕਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਆਪ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਕੋ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਰੱਖੇਂ, ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕਾ ਦੇਹ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਯਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਯਹ ਸੀੜੀ ਕਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਛੱਤ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੇ, ਅਗਰ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸੀਧੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਜਾਮੇ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਂ ਸਮਾ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰੋਂ, ਸ਼ਰਾਬੋਂ, ਕਬਾਬੋਂ, ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ, ਮਜ਼ਹਬੋਂ, ਮੁਲਕੋਂ ਕੇ ਝਗੜੋਂ ਮੇਂ ਫਸੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਭੋਗਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਏਕ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ 84 ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਮੇਂ ਆਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਮੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਤਨਾ ਇੰਦਰੀਓਂ ਕੇ ਭੋਗੋਂ ਮੇਂ ਫਸ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਔਰ ਤੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਤੇ ਹੈਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਛੋੜਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਕਰ ਖੁਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਮੇਂ ਛੋੜ ਕਰ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਜਿਨ ਸ਼ਕਲੋਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵਹ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਯਾ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਯਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਹ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਾ, ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਂ ਗਫਲਤ ਕੀ ਨੀਂਦ ਸੇ ਜਗਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਕਤ ਕੋ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕਰ ਦੇਖੇਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਆਪਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਪਕੀ ਮਦਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯਹ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਿਨਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲੋਂ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਤੋ ਯਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਤੇ ਕਿਸ ਔਰ ਸੇ ਹੈਂ ਔਰ ਹਮੇਂ ਕਾਨ ਸੇ ਪਕੜ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਸਵਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਹਮ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਿਛੜਨੇ ਪਰ ਰੋਨੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਆਪ ਦੇਖੇਂ ਔਰ ਤੋ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਇਨ ਸੇ ਲੇਨ ਦੇਨ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ੋਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬਣਕਰ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਬਣਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਣਕਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਕਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੀ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਨਾ ਆਜ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਭੀ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਮੇਂ ਛੋੜ ਕਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ ਔਰ ਕਈਓਂ ਕੋ ਹਮ ਛੋੜ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ, ਧਾਮ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ, ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ, ਯਹੀ ਹੈ ਦਾਮ ਗੰਠ ਬੰਦਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ कि ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मज़हब तुम्हारा मज़हब नहीं है। तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा देश सचखंड है। तुम परदेशियों की तरह इस दुनिया में मारे मारे फिर रहे हो, भटकते फिर रहे हो। जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को चुरा कर बहका कर कोई लंदन ले जाता है, वहीं पर वह तलीम हासिल करता है, शादी कर लेता है, वहां पर ही बाल बच्चे हो जाते हैं, वह उस मुल्क को ही अपना मुल्क समझना शुरू कर देता है, उन लोगों को ही माता पिता बहन भाई समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब कोई उसके अपने मुल्क का वासी वहां आता है जो उस देश की बोली समझता है, वह उसकी बोली और रहन सहन को अपना कर उससे मित्रता करके उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख, ये तेरे माता पिता नहीं हैं, ये तेरे बहन भाई नहीं हैं, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़रिए उसमें देशभक्ति जाग उठती है, माता पिता का प्यार जाग उठता है और वह उसके समझाने के अनुसार अपने मुल्क वापस आ जाता है। इसी प्रकार संत महात्मा यहाँ आकर हमारे जैसे बनकर हमारी बोली में हमें समझाते हैं कि ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मुल्क तुम्हारा मुल्क नहीं है। तुम व्यर्थ ही इनके मोह और प्यार में फंसकर भटक रहे हो और इनमें सुख और शांति ढूंढने के लिए दिन रात तड़पते फिरते हो। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। जिस परमात्मा ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, उसी परमात्मा ने मुझे तुम्हें वापस बुलाने के लिए भेजा है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं। इसलिए महात्मा तो केवल हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं। अब हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप देखें, हम जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ते हैं, बबूत लगाते हैं, कान चिरवाते हैं। ये सभी साधन सभी तरीके हम केवल परमात्मा से मिलने के लिए ही करते हैं। लेकिन यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि भाई, मालिक से मिलने का केवल एक ही तरीका है। वह कौन सा तरीका है? लग शब्द अनाहत जाई, कि अपने अंदर सुरत को अनहत शब्द से जोड़ो। जब तक आप अंदर अनहत शब्द को नहीं पकड़ते, आप में से किसी का कभी मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जग फाता महाजाल, गुरप्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। अगर गुरमुखों के उपदेश पर चलकर सच्चे नाम सच्चे शब्द की कमाई में लग जाएंगे तो आप इस भावसागर से हमेशा के लिए पार हो जाएंगे। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस शब्द की कमाई करने का प्यार पैदा करते हैं, नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। शब्द या नाम की कमाई करने का क्या मतलब है? महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा धुनात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द महात्मा उसको कहते हैं जो हमारे लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। ये जितने भी हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखे हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमात्मा, परमेश्वर आदि, ये सभी हमारे लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कितने ही मुल्क हैं, हर एक मुल्क की कितनी कितनी जुबानें हैं और हर एक जुबान में महात्माओं ने परमात्मा को कितने कितने नामों से याद किया है। अभी हजारों अनेकों महात्माओं ने दुनिया में आना है और हजारों अनेकों लफ्जों से उस परमात्मा को याद करना है। पिछले महात्माओं द्वारा रखे हुए परमात्मा के नाम हम भूलते जा रहे हैं, आगे प्यार में आकर परमात्मा के नाम रखते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को प्यार से कई लफ्जों द्वारा याद करती है, लेकिन माता का बच्चे से जो रिश्ता है वह लफ्जों का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। माँ किसी भी लफ्ज से अपने बच्चे को याद कर सकती है, लफ्ज तो माँ के प्यार को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से जो रिश्ता है वह कोई लफ्जों का रिश्ता नहीं है, भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। ये लफ्ज तो महात्मा के प्यार को प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। वह जो रिश्ता है वह सच्चे प्यार का रिश्ता है, सच्चे शब्द का, सच्चे नाम का रिश्ता है, जो ना आंखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है और ना जबान से बयान किया जा सकता है। जिसको हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर याद किया करते थे। हजरत ईसा समझाते हैं, हैविंग आईस यू सी नॉट, हैविंग ईयर्स यू हियर नॉट, आंखें होने के बावजूद तुम उसको देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद तुम उसको सुन नहीं सकते। यही गुरु अंगद साहब वाणी में लिखते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमे मिलना। आप उस शब्द या नाम या हुक्म को पकड़कर अपने खसम या परमात्मा से मिलोगे, जिसको ना तो आपकी आंखें देख सकती हैं, जिसका ना आपकी जबान बयान कर सकती है, ना कान सुन सकते हैं। वहां ना किसी के हाथ लेकर पहुंचते हैं, ना किसी के पैर लेकर पहुंचते हैं, और जिस चीज को हम जीते जी मरकर प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है जिस चीज को नौ द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का स्थान है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिवचक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है, वह स्थान हर एक की आंखों के पीछे है। इस स्थान से ही सबका ख्याल नौ द्वारों से उतरता है। नौ द्वार हैं, दो आंखें, दो कान के सुराख, दो नाक के सुराख, एक मुंह और नीचे दो इंद्रियों के सुराख। इन नौ द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे हुए कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निचला नहीं बैठता। कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को बंद क्यों न कर लें, आप वहाँ नहीं होंगे, आपका मन सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमें गुरुमुखों के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के द्वारा इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने आप अंदर समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ पर किसी कौम का, मज़हब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भाग्यवान खुशकिस्मत ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को स्वामी जी महाराज निरत कहते हैं, इसके सुनने की शक्ति को आप सुरत कहते हैं। आंखों के पीछे आकर सुरत शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देती है और निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। हम उस आवाज के जरिए घर का रुख कायम कर लेते हैं, उस प्रकाश के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते हैं। ये शब्द या नाम भी कहीं बाहर नहीं है, ये सबके शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, वह तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, थक कर चूर चूर हो जाते हैं, खून पसीना भी एक कर देते हैं, लेकिन जिनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। देख लें, अगर कोई चीज़ हमारे घर में खो जाए, हम घर के अंदर जाकर खोज करेंगे तभी उस चीज़ को पा सकेंगे। अगर हम उसको मंदिरों, गुरुद्वारों या गिरजाघरों में, जंगलों, पहाड़ों में, हिमालय में खोज करने लगें, हम उस चीज़ को कैसे पा सकते हैं? गुरु रामदास जी कहते हैं, कर रतन लाल बहुमानक लादे, मन परम्या लै न सकाइए। हमारे घर यानी शरीर में परमात्मा ने नाम के अनगिनत खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन बाहर के वहमों भ्रमों को नहीं छोड़ता, कर्मकांड को नहीं छोड़ता, शरीर के अंदर जाकर उसकी तलाश नहीं करता। फिर हमारा मन उस दौलत को प्राप्त कैसे कर सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, मालिक से मिलने का एक ही उपाय है, लग शब्द अनाहत जाई, कि अपने अंदर अनहत शब्द से ख्याल जोड़। जब तक तू अंदर अनहत शब्द को नहीं पकड़ता, बाहर जितना मर्जी तू किसी चीज़ को माथा टेकता रहे, तेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए महात्मा हमें बाहर के वहमों, भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं और हमारे ख्याल को अंदर शब्द की ओर ले जाते हैं, नाम की ओर ले जाते हैं।
बिन शब्द उपावना दूजा काया का छूटे ना कूजा।
अब मन में ख्याल आता है कि क्या और भी कोई उपाय है, और भी कोई साधन है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज बड़ा जोर देकर समझाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा। भाई, नाम या शब्द की कमाई के स्वाय कोई उपाव, कोई तरीका नहीं कि तू देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। बाकी जितने भी साधन तू करता है उनका फल तुझे जरूर मिल जाएगा। उन साधनों के कारण हम सेठ साहूकार बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठों और स्वर्गों तक चले जाएंगे। लेकिन इन साधनों से कभी देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नामे होर पूज न होवी परम पुली लोकाई। शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति ही नहीं है, कोई मालिक की पूजा ही नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव वहमों भरमों में फंसकर भूले फिरते हैं। आप सोचें, अगर शब्द या नाम की कमाई ही मालिक की एकमात्र भक्ति है तो ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों के पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? सरोवरों में स्नान करने का, जप तप पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा हुआ? जठा रखने का, बबूत लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? माथे टेकने, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाने का क्या फ़ायदा हुआ? बेटे बेटियों को छोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ? गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग अंतकाल पछता ही। आप नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि हमने व्यर्थ अपने कीमती वक़्त को बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? विण नामे दर टोई नाहीं ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बिना आपको कभी मालिक के घर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। कलयुग में महात्मा ने केवल उस कीर्तन की महिमा की है जिसको गुरमुख लोग बड़े ध्यान से अपने अंदर सुनते हैं। ये बाहर का कीर्तन नहीं है, ये शब्द या नाम रूपी कीर्तन सबकी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस युग का तरम पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, एथे अगे हर नाम सिखाई। चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। प्रत्येक युग में जिंदगी के अलग अलग हालात हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी होती थी, हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी होती थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में फैला हुआ नहीं था। थोड़ी सी मेहनत से हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग बदलते गए, हमारी उम्र भी छोटी होती गई, सेहत भी बिगड़ती गई और ख्याल भी दुनिया में फैलता गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वह अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। आजकल तो कोई भाग्यशाली जीव ही 70-80 साल बिताकर जाता है। सेहत भी इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम लगातार 1-1.5 घंटा भी एक आसन पर बैठकर मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। ख्याल भी इतने फैले हुए हैं कि हम 5 मिनट भी किसी बात पर एकाग्र होकर विचार नहीं कर सकते। इसलिए गुरु साहब बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर तुम कलयुग में जिंदगी के 4 दिन शांति से गुजारना चाहते हो और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो केवल नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम से ख्याल जोड़कर रखते हैं वह हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़ता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा। भाई, शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई उपाव नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि तू देह के बंधनों से छुटकारा पा सके।
घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे। ये घर कौन सा है? हमारा शरीर है। वह घर कौन सा है? जिस जगह परमात्मा रहता है, जिस परमात्मा को सबकी खोज है, वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी देह या शरीर के अंदर है। अगर कोई लेबोरेटरी है जिसके अंदर जाकर ही हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह हमारा शरीर है, हमारी देह या हमारा वजूद है। हजरत ईसा ने समझाया था, रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जो कुछ पिछले जन्मों में कर्म कर बैठे हो उनका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब करो, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी देह और शरीर में बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो। वह परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके अपने शरीर के अंदर ही मालिक को पहचानने की कोशिश करो। महात्मा कहते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है, तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा वजूद ही हो सकता है। ऋषियों मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। ये वह शरीर है जो उस नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा को नारायण होने का फख्र हासिल हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी तो साफ कह रहे हैं, हर मंदिर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। केवल हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हर मंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, केवल अपने शरीर के अंदर ही होगा। मन में विचार आता है कि अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई, कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में है। ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागन हुई। गुरु अर्जुन साहब कारण बताते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो में पाई, कि भाई परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है, तुझे दिखाई इसलिए नहीं देता कि तेरे और परमात्मा के दरमियान हौमे की रुकावट है, खुदी की रुकावट है। हौमे क्या है? ये जो सारा दिन सोचते रहते हैं, ये मेरी जायदाद है, मेरी औलाद है, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, यही हौमे है। जिनको सारा दिन मेरा मेरा कहते हैं, ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये ना तो आज तक किसी के कभी बने हैं, न कभी बन ही सकते हैं। लेकिन जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश हमें इनके मोह या प्यार में फंसा देती है। जहां आसा तहां वासा, इनका मोह हर एक को देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है, क्योंकि जिधर हमारा सारी उम्र ख्याल रहता है, हम मौत के बाद उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें बार बार देह के बंधनों में लाई, दुनिया का मोह या प्यार लाया? किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए हमें जो भी कोशिश करनी है, अपने रास्ते से मन की रुकावट दूर करने की करनी है। मन की रुकावट को रास्ते से दूर करने का क्या मतलब है? मैंने विनती की थी कि हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये भी ब्रह्म की अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। लेकिन विषय विकारों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को खो बैठा है। जो जो कर्म मन करता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना आत्मा को अपने आप की समझ आ सकती है, ना अपने असल की समझ आ सकती है। इसलिए सोक्रेटिस ने कहा था, नो दाई सेल्फ। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वह जीव निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर से सभी गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी कि आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। आप देखें, बादलों के अंदर पानी कितना साफ सुथरा होता है, जब बरसात बनकर जमीन पर आता है कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है और अपने आप को गंदगी का हिस्सा समझना शुरू कर देता है। जब इसे सूरज की तपश मिलती है वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है, फिर उसे होश आ जाती है कि गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं फजूल ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जब गंदगी से अलग होता है फिर पता चलता है कि मेरा असल मेरा मूल आकाश के बादल हैं, सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यही हम सबकी आत्मा की हालत है। आत्मा परमात्मा की अंश है लेकिन मन के अधीन होकर कर्मों के जाल में फंस चुकी है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ेगी ना कभी आत्मा को अपने आप की समझ आ सकती है ना उसे अपने असल की समझ आ सकती है। महात्मा कहते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक आप मन को दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं देंगे ये दुनिया का मोह या प्यार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आप देखें अगर कोई कौड़ियाँ मांगता फिरता हो आप उसकी एक कौड़ी लेने की कोशिश करें वह मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। 10 रुपये का नोट उसके हाथ में दे दें उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाती है। लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शादी के बाद कौन गुड़ियों की परवाह करता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब तक हमारे मन को दुनिया से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलेगा ये दुनिया का मोह या प्यार कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है। गुरु रामदास जी कहते हैं नाम मिले मन तृप्तिये बिन नाम में त्रिक जीवास। ये जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह दिन रात भटकता और तड़पता फिरता है जिस समय इसको अंदर अमृत से भरा हुआ नाम मिल जाएगा इसकी तड़प खत्म हो जाएगी। उस नाम की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस लज्जत को प्राप्त करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों विषय विकारों शराबों कबाबों को छोड़ देगा। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। मैंने अर्ज की थी कि लड़कियां तब तक ही गुड़ियों से खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। ओनली एन अटैचमेंट कैन क्रिएट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट कैन नेवर क्रिएट अटैचमेंट। अगर किसी लड़की को शादी से पहले समझाने की कोशिश करें कि देख बेटी तेरी शादी की तारीख रख दी गई है, तू अब माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहनों भाइयों का प्यार छोड़ दे, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दे, तो वह बेचारी कितनी ही कोशिश करे कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिस समय उसकी शादी हो जाती है पति से उसका प्यार हो जाता है तब वह माता पिता को भी भूल जाती है, बहन भाइयों को भी भूल जाती है, सखी सहेलियों को भी भूल जाती है। एक आदमी के मोह या प्यार ने सारी दुनिया का मोह और प्यार उसके अंदर से निकाल दिया। यही हमारे मन की आदत है। ये भी ऊंची लज्जत को पाकर नीची लज्जत को छोड़ देता है। जब इसे शब्द की लज्जत मिल जाती है, नाम की लज्जत मिल जाती है, इसका ख्याल अपने आप विषय विकारों में से निकल जाता है। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं घर में घर गुरु दिखला में। संत महात्मा माल्य के भगत और प्यारे समझाते हैं कि इस शरीर रूपी घर में बैठकर हमें अपने असली घर किस प्रकार पहुंचना है, वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हमें अपना रूहानी सफ़र तय करते हुए वापस अपने ठिकाने पर आ जाना है, वह कौन सा तरीका और साधन है जिसके द्वारा मन की रुकावट को दूर करना है। आप फरमाते हैं धुन शब्द पाँच बतलावें कि पाँच शब्द पाँच धुन हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रही हैं जिनकी सहायता से रूहानी सफ़र तय करके हमें वापस घर पहुंचना है। शब्द तो एक है लेकिन वह पांच मंजिलों में से होकर आ रहा है, इसलिए आम संतों महात्माओं और स्वामी जी महाराज ने इसको पांच शब्द या पांच नाम कहकर याद किया है। आप देखें नदी एक जगह से निकल कर समुन्द्र में जाकर समा जाती है। जिस जगह से नदी निकलती है उस जगह की आवाज़ और तरह की होती है। जब खड्डों में से होकर निकलती है आवाज़ बदल जाती है। जब वह झरना बनकर गिरती है फिर आवाज़ बदल जाती है। जब मैदान में फैलती है तो आवाज़ बदल जाती है। जब समुद्र में समा जाती है तो और आवाज़ हो जाती है, लेकिन हर जगह नदी एक ही होती है। इसी प्रकार वह शब्द एक ही है जो कि धुर से सचखंड से उठकर सबकी आँखों के पीछे आ रहा है, लेकिन पांच मंजिलों में से होकर आ रहा है, इसलिए महात्मा ने पांच शब्द या पांच नाम कहकर इसका जिक्र किया है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं कर में कर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुनकार तुन तह बाजे शब्द निशान। जो महात्मा हमें घर के अंदर से हमारे असली घर पहुंचा देता है, वही हमारा असली सतगुरु है। किस प्रकार पहुंचा देता है, उसकी निशानी ये है कि वह सबकी आंखों के पीछे दुनकार दे रही पांच धुनों का ज्ञान देता है। उन पांच शब्दों के द्वारा हम वापस अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं। कबीर साहब ने भी पांच शब्दों का जिक्र किया है। मुसलमान फकीर भी पांच नौबतों का जिक्र करते हैं। इसलिए हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर उस शब्द की लज्जत प्राप्त करनी है, उस नाम की लज्जत प्राप्त करनी है। वह लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस नाम को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों को छोड़ देगा।
धुन में आवे सुरत लगावो, इस घर से उस घर जावो।
आप समझाते हैं कि इस घर से उस घर जाओ, इस शरीर रूपी घर में बैठकर हमें सचखंड रूपी निज घर की खोज कर लेनी चाहिए। उस घर को भूलकर हम दुखी हो रहे हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं। जितना इस घर में शांति और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम दुनिया के जीव दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि जिन चीज़ों में से सुख ढूंढते हैं, वह सभी नाशवान हैं, आरजी हैं। इनका सुख और आराम भी आरजी या नश्वर ही हो सकता है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख दिखाई देते हैं, सब धीरे धीरे दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। शादी होती है, मन में कितनी खुशी होती है। उसी साथी से अनबन हो जाए, घर नरक बन जाता है। संतान पैदा होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, दावतें देते हैं, लेकिन हर एक का अनुभव है कि वही बाल बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी नालायक निकल आते हैं, कभी परमात्मा उन्हें वापस बुला लेता है। वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी हमें पता है कि किस प्रकार रातों रात राज्य पलट जाते हैं, लोग गोलियों का शिकार बना देते हैं, जेलखानों में डाल देते हैं, पैरों के नीचे उनकी मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से हमें हमेशा रहने वाला सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमात्मा ने ये दुनिया ही दुखों और सुखों की नगरी बनाई हुई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए पाई। जो अपने घर पहुंच जाते हैं, सच्चा सुख और सच्ची शांति उन गुरमुखों को ही प्राप्त होती है। जब तक हम परदेशियों की तरह, बेरोजगारों की तरह इस दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, हम सुख किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने घर पहुंचकर ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जब तक परमात्मा ने आपको इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, आपको अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, वापस असली घर पहुंच जाना चाहिए। किस प्रकार घर जाना है? धुन में अब सुरत लगावो। सबकी आंखों के पीछे शब्द या नाम धुनकारें दे रहा है, उसमें सुरत को जोड़ें, उस शब्द को पकड़ें, उस शब्द की आवाज और प्रकाश के जरिए आहिस्ता आहिस्ता अपना रूहानी सफर तय करते हुए आप मंजिले मकसूद पर पहुंच जाएंगे।
वे घर है अगम अपारा, दसवें के पार निहारा, दस द्वारा घट चढ़े खोलो, सत शब्द अधर पे तो लो।
अब स्वामी जी महाराज फिर अंदर के रूहानी सफर का इशारा करते हैं कि आपका रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, एक आँखों के ऊपर है। आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की लज्जतें हैं। जितनी देर आपका ख्याल आँखों के नीचे नीचे है, आपको अपने घर का दरवाज़ा ही नहीं मिला, घर जाने का रास्ता ही नहीं मिला, जिसके कारण आप कभी अपना रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकेंगे। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करेंगे, तब आपको घर का रास्ता मिलेगा, जिस रास्ते पर चलकर आपको रूहानी सफ़र तय करना है। फिर आपका ख्याल अंदर उस शब्द या नाम के साथ जुड़ता है, जिस शब्द को पकड़कर ही आप मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर की ओर जा सकेंगे।
बिन मेहर गुरु नहीं पावे बिन शब्द हाथ नहीं आवे।
स्वामी जी महाराज की सारी तलीम का सार एक लाइन में बयान किया जा सकता है, बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। आप कहते हैं शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे कितने भी यत्न या उपाय क्यों ना कर लें, आप गुरमुखों के बिना शब्द या नाम की कमाई नहीं कर सकते। गुरमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, उस परमात्मा ने शब्द या नाम की दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। गुरमुख तो इशारा करते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरीके और साधन के द्वारा हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरु रामदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, ज्यों ओडा कूप गुहज खिन काडै त्यों सतगुर वस्त लहाइए। प्राणी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे आकर दब जाते हैं। हम उस जमीन पर चलते फिरते हैं, हमें पता नहीं होता कि बना बनाया कुआं यहाँ मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ओड वह सज्जन हैं जो कि अपने इल्म और हुनर से हमें समझा देते हैं कि इस जगह पर जमीन की खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। वह कुआं लगाकर मिट्टी में दबाकर खबर देने नहीं आते, उन्हें जानकारी और अनुभव है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम कुएं के पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार महात्मा समझाते हैं कि माल्य के भक्तों और प्यारों संत महात्माओं ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना है, परमात्मा ने वह दौलत हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है। उन्होंने तो इशारा करना है, तरीका समझाना है, जिसके द्वारा हम अंदर उस दौलत को प्राप्त करके बादशाह बन जाते हैं, हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। आप देखें कि विद्या की ताकत हम सबके अंदर मौजूद है, लेकिन वह सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, तभी BA, MA, विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बन जाते हैं। जिनके पास डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री है, पूछकर देखें कि उस्तादों ने कौन सी चीज़ उनके अंदर घोलकर डाली है। केवल उस्तादों की संगत और सोबत करने से ही आज वह इतने लायक बने बैठे हैं। जो स्कूलों कॉलेजों से ही डरकर भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, पर वह सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती है। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आपको जो कुछ मिलना है वह शब्द या नाम की कमाई से ही मिलना है, और जब भी अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ सकेंगे, केवल गुरमुखों के द्वारा ही जोड़ सकेंगे, साधुओं संतों महात्माओं के द्वारा ही जोड़ सकेंगे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरसों पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। हे भाई, जिस परमेश्वर ने तुझे पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तेरे अंदर तेरे लिए रखकर उसका भेद उसकी कुंजी गुरमुखों के हवाले कर दी है। तू मन बुद्धि के द्वारा ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर सत्संग सुनकर कितना भी इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश क्यों न कर ले, कभी कामयाब नहीं हो सकेगा बिन सतगुर शरणाई, जब तक तू गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर नहीं चलता। इसलिए स्वामी जी महाराज बार बार हमें इसी नुक्ते पर लाते हैं कि जो कुछ भी मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। जब भी नाम की कमाई कर सकेंगे, केवल गुरमुखों के जरिए, मालिक के भक्तों और प्यारों के जरिए कर सकेंगे।
सूरत खेंचे चढ़ावो गगनी धुन शब्द सुनो ये करनी।
स्वामी जी महाराज की तालीम हमें शरीर के बाहर नहीं जाने देती, हमारे मन को किसी कर्म कांड की ओर नहीं जाने देती। आप फरमाते हैं सुरत खेंच चढ़ाओ गगनी, कि केवल एक ही करनी करने की जरूरत है कि सूरत को नौ द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो। ये नहीं कि गंगा गए और गंगाराम बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए, और जो भी किसी ने कुछ बताया वही कर्म करना शुरू कर दिया, यहाँ भी माथा टेक लिया वहाँ भी माथा टेक लिया कि शायद सब कुछ ही इन चीज़ों से मिल जाएगा। आप फरमाते हैं कि इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि जो कुछ भी मिलना है सूरत शब्द के अभ्यास से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब तब पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है वह सब शब्द या नाम की कमाई में ही आ जाता है। आप देखें अगर हमारी जबान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, इससे बड़ा और जप क्या हो सकता है। जब उस परमात्मा के हुक्म मालिक के भाने में रहते हैं, इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब प्यार में आकर महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। जब ख्याल को आंखों के पीछे टिकाकर अंदर अनहद वाणी को सुनते हैं, इससे बड़ा पाठ और क्या हो सकता है। जब नाम रूपी अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग क्या हो सकता है। न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न बेटे बेटियां त्यागने की ज़रूरत है। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं लिबड़ना है, तथा अपनी सूरत को आँखों के पीछे लाकर नाम के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्ताए न पाई। भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश अपने असल की ओर जरूर जोर मारती है। उसके अधीन होकर हम सब उस परमात्मा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो शब्द की कमाई करके नाम की कमाई करके अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, परमात्मा की असल भक्ति की समझ या परख उन्हीं गुरमुखों को है। यही भक्ति वापस ले जाकर हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है वह सूरत को आंखों के पीछे लाकर नाम या शब्द की कमाई करने की भक्ति है।
मन चंचल थिर ना रहावे, चित निर्मल कस होए आवे, सुरत शब्द कमाई करना। सब जतन दूर अब धरना।
आप फरमाते हैं कि अगर तालाब गंदा हो, उसके अंदर लहरें उठ रही हो, हम उसमें अपनी शक्ल कभी नहीं देख सकते। अगर लहरें बंद हो जाएं, मिट्टी बैठ जाए, तो हम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं। हमारे मन के अंदर विषय वकारों शराबों कबाबों कौमों मज़मों और मुल्कों के मोह की लहरें दिन रात उठ रही हैं। हमारा मन दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर अति गंदा और मैला हो चुका है। जब तक हम अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बनते, हम परमात्मा को पहचानने के काबिल कैसे बन सकते हैं। इस काम की सफलता प्राप्त करने के लिए यही उपाय है सूरत शब्द कमाई करना, कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ो नाम के साथ जोड़ो। फिर समझाते हैं सब जतन दूर अब धरना, कि स्वाय सूरत शब्द के अभ्यास के नाम की कमाई के और कोई यत्न करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब साधन सब उपाय छोड़ देने हैं, सब कर्म कांड छोड़ देने हैं, केवल सूरत शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। आप फरमाते हैं कि मन की रुकावट को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ो नाम के साथ जोड़ो।
निश्चय दृढ़ इस पर करे कभी ना फिरे ना।
अब स्वामी जी महाराज दो जबरदस्त नसीहतें देते हैं। एक तो महात्माओं पर, गुरुमुखों पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि शब्द या नाम की कमाई ही एक ऐसी भक्ति है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिला सकेगी। यही भक्ति हमारे रास्ते से मन की रुकावट को दूर कर सकेगी, आत्मा और मन की गांठ को खोल सकेगी। इसी के द्वारा हमारी आत्मा पवित्र हो सकेगी, परमात्मा से मिलने के काबिल हो सकेगी। अगर हमें भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, हमारा मन कभी नाम की कमाई की ओर चल ही नहीं सकता। अगर हमें पता हो कि ये सड़क सीधी दिल्ली की ओर जाती है, किस प्रकार अपनी मोटर दौड़ाते चले जाते हैं। अगर मन में शंका या भ्रम हो, जगह जगह खड़े होकर पूछते हैं, नक्शे देखते हैं, थोड़ा चलते हैं लेकिन कभी फिर बाएं मुड़ जाते हैं, कभी दाएं मुड़ जाते हैं, हमारा सफ़र कितना लंबा हो जाता है। अगर भरोसा ना हो, ये दुनिया तरक्की ही नहीं कर सकती। हमें भरोसा होता है तब हम हवाई जहाज़ों में सैर करते हैं, समुद्री जहाज़ों में घूमते हैं, गाड़ियों में रात को सो जाते हैं। वह कितने गड्ढों पर से गुजरती है, कितनी नदियों पर से जाती है, उन पर भरोसा करके ही सफ़र तय किया जा सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महात्मा अपना जो निजी अनुभव समझाते हैं कि केवल सूरज शब्द के अभ्यास द्वारा ही मन की रुकावट रास्ते से दूर होगी, हमें उनके उपदेश, उनकी तालीम पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ताकि हम उनके अनुभव से पूरा पूरा लाभ उठा सकें। दूसरी नसीहत ये देते हैं कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, रोज़ मालिक की भक्ति को पूरा पूरा समय देना चाहिए। मालिक की भक्ति का कोई खास समय नहीं है, सुबह बैठें, दोपहर को बैठें, शाम को बैठें, जो भी समय उस मालिक की भक्ति नाम की कमाई के लिए निकालेंगे वही समय हमारे लेखे में लिखा जाता है। लेकिन सुबह के समय के बहुत से ऐसे फायदे हैं जो हमें दूसरे किसी समय में नहीं मिल सकते। जिस समय हम सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहले हमारा शरीर बिल्कुल ताज़ा होता है, पिछले दिन की सारी थकावट दूर हो चुकी होती है, हमारा ख्याल भी दुनिया के अंदर फैला हुआ नहीं होता, गलियों और मोहल्लों में भी शांति होती है। फिर जब हम एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं, क्यों ना मालिक का नाम लेकर शुरू किया जाए, ताकि उसका सुरूर, उसकी खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे। अगर हम दोपहर के समय भजन में बैठेंगे, स्त्रियों को चौके चूल्हे का काम भी करना है, पुरुषों को दफ्तर भी जाना है, तथा गली मोहल्लों में भी कितना शोर होता है और उतना समय भी नहीं निकलता। अगर हम शाम को भजन करते हैं, सारा दिन काम काज करके शरीर थक जाता है और सारे दिन के झगड़े आंखों के आगे आकर फिरना शुरू हो जाते हैं। जो सुबह घंटे डेढ़ घंटे में काम बनना है, उसके लिए शाम को चार पाँच घंटे चाहिए, इतना समय किसके पास होता है। इसलिए महात्मा सुबह के समय को ही भजन करने के लिए उचित बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास सुबह समय ना हो वह दोपहर को ना बैठे या शाम को भजन के लिए ना बैठे। जो घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा मालिक की भक्ति करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी, उसी का हमें फ़ायदा मिलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आलस ना करें, सुस्ती ना करें, यूं ही कागज़ पेंसिल लेकर स्कीमें ना बनाते रहो कि थोड़े साल रह गए हैं, रिटायर हो जाएंगे, बाल बच्चे कारोबार संभाल लेंगे, तब निश्चिंत होकर किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में बैठकर मालिक की भक्ति करेंगे। कितनी भी नेक नीयत से स्कीमें क्यों ना बनाएं, हमें मालिक की स्कीम का पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं कि कब भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाएगा, किस समय मालिक का बुलावा आ जाएगा। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि ग्रास हाथ में पकड़ा होता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हार्ट फेल हो जाता है। हम योजनाएं तो ऐसे बनाते हैं जैसे हजारों साल यहीं बैठे रहना है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मन के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अंत समय हमारे साथ जाएगी। बाकी दुनिया की सब चीजें यहीं छोड़ देनी पड़ेगी। अगर महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान की धन दौलत ना जा सकी, हमारे साथ दुनिया की कौन सी धन दौलत जा सकेगी। ये जो रुपया, पैसा, जायदाद वगैरह आज हमारे नाम है, ये चीज़ें कभी हमारे बुजुर्गों के नाम पर हुआ करती थी। अगर उनके साथ नहीं गई, हमारे साथ किस प्रकार जा सकेंगी। अगर ये चीज़ें किसी के साथ जा सकती होती तो लोग पहले ही बुक करवा कर भेज देते, हमारे हिस्से तो कुछ आना ही नहीं था। स्वामी जी महाराज प्यार के साथ फरमाते हैं कि इस बात में कभी आलस ना करें, रोज नाम की कमाई करनी है, रोज मालिक की भक्ति करनी है।
यह सारे सारे सब गाया संतन मत भाख सुनाया।
अब सब कुछ कहकर आप फरमाते हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई नई फिलॉसफी नहीं समझा रहा हूँ, ये सार सार सब गाया। आप कहते हैं कि जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबका यही निजी अनुभव है तथा हर एक महात्मा ने इसी सूरत शब्द के अभ्यास का प्रचार किया है। महात्माओं की तालीम को उनके असली अर्थों में समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी तालीम कुल आलम के लिए है। हमें उस ऊंचे और निर्मल उपदेश को कौमों मजहबों मुल्कों में बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी निर्मल रूहानियत को समझना चाहिए ताकि सब लोग महात्मा की वाणी से लाभ उठा सकें। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितने भी संत महात्मा आए हैं सब ने शब्द का प्रचार किया है, नाम का प्रचार किया है।
राधा स्वामी भेद लखाया सुन मान सारे समझाया।
ये राधा स्वामी ना किसी कौम का नाम है ना किसी मजहब का नाम है। जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, उसी प्रकार हजूर स्वामी जी महाराज ने उस परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। राधा का अर्थ आत्मा है, स्वामी का अर्थ परमात्मा है। स्वामी स्वामी सभी महात्मा उस परमात्मा को कहते आए हैं। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं ऊंच अपार व्यंत स्वामी, लेकिन वह किसका स्वामी है? हमारी आत्मा का स्वामी है। इसलिए आपने साथ ही राधा का शब्द लगा दिया। ये कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना कभी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि महात्माओं की इतनी ऊंची और निर्मल वाणी या उपदेश को किसी कौम या मजहब की शक्ल देने की कोशिश करें। मैंने अर्ज की थी कि महात्मा तो निर्मल रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं, केवल शब्द या नाम की कमाई करने का शौक और प्रेम पैदा करने के लिए आते हैं। हमें चाहिए कि महात्माओं के उपदेश को सही अर्थों में समझकर उससे लाभ उठाएं। स्वामी जी महाराज ने इस छोटे से शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोलकर हमें समझाया कि शब्द या नाम की कमाई क्यों करनी है, शब्द या नाम किस जगह है, ख्याल को शब्द या नाम से किस प्रकार जोड़ना है। मेरा अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने का केवल इतना ही मतलब है कि जितने भी संत महात्मा आए हैं सबका एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। हमें भी उनके अनुभव से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, नाम के साथ जोड़ना चाहिए।
यह सारे सारे सब गाया संतन मत भाख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया सुन मान सारे समझाया।